मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे प्री एग्जामिनेशन के संदर्भ में ऑब्जर्वेशन के बारे में कुछ बातें कर रहा हूँ। कल मैंने कुछ बातें विस्तार से आप सबके सामने रखने की कोशिश की थी और मुझे नहीं मालूम कि मेरी इन बातों पर आप कितना विश्वास कर पा रहे होंगे। ज्यादातर तो मुझे इसी बात की आशंका है कि शायद आप विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे। इसका कारण बहुत साफ है। इसका कारण यह है कि आपको लगता है कि जो IAS की तैयारी है वो तो बहुत ही कठिन तैयारी है और उस कठिन तैयारी को भला ऑब्जर्वेशन जैसे सामान्य सी प्रक्रिया से कैसे पूरा किया जा सकता है। नहीं देखिए, मैं पूरा करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन से ही आपकी तैयारी हो जाएगी। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि तैयारी करने के जो अलग अलग बिंदु हैं, जिनका उल्लेख मैंने इससे पहले किया है, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ऑब्जर्वेशन का भी है। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आप कभी अपनी माँ से पूछिएगा, अपनी दादी से पूछिएगा, नानी से पूछिएगा, जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हों, जिनकी गोद में आप खेले हों, जिनकी उंगलियां पकड़कर आपने चलना सीखा हो, उनसे केवल एक छोटा सा प्रश्न कीजिए और उनसे ये प्रश्न कीजिए कि माँ जब मैं छोटा था या माँ जब मैं छोटी थी तो मैं कैसे मैं चीजों के बारे में जानती थी। वो आपको बताएंगे कि तुम चीजों को ध्यान से देखते थे, तुम चीजों को छूते थे, उनके बारे में पूछते थे। ये छूना, ध्यान से देखना, क्या ये ऑब्जर्वेशन नहीं है? तो बचपन का हमारा जो पूरा का पूरा ज्ञान है वो केवल ऑब्जर्वेशन के ही माध्यम से है, केवल अवलोकन के ही माध्यम से है। लेकिन बाद में जैसे ही हमारे हाथों में किताब थमा दी जाती है, और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे स्कूल और यहाँ तक कि हमारे अभिभावक भी उसके बाद से ये कहना शुरू कर देते हैं कि जो भी ज्ञान है अब इन किताबों में ही है और इसी में तुम खो जाओ, और वहीं से ज्ञान की जो सही परिभाषा है हमसे अलग होती चली जाती है। अदरवाइज ऑब्जर्वेशन हमारे ज्ञान का सबसे प्रमुख बिंदु होता है। मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान दें। जब भी आप किसी विषय पर मेरे लेक्चर सुनेंगे तो आपको दो बातें बिल्कुल अलग सुनाई पड़ेंगी। नंबर वन, जब भी मैंने किसी भी विषय को उठाया है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या दूसरे एनवायरमेंट, जो जिस विषय को भी मैंने उठाया है, पहले मैंने बहुत विस्तार से बताने की कोशिश की है कि यह जो विषय है किस तरीके से व्यावहारिक है। यानी कि जो बाहरी जगत में आप जो कुछ भी देख रहे हैं वही इस विषय में है। ऐसा नहीं है कि इस विषय को पढ़ने के बाद ब्रह्मा ने या प्रकृति ने इकोनॉमिक्स की रचना की है, बाजार की रचना की है या संविधान का निर्माण किया है। ऐसा नहीं है। संविधान के निर्माण करने वालों ने पहले हमारे जीवन को देखा है और फिर उसके अनुकूल संविधान बनाया है। ज्योग्राफी को लिखने वालों ने पहले पूरे की पूरी प्रकृति को देखा है, उसका अवलोकन किया है और उसके बाद फिर उसके आधार पर ज्योग्राफी विषय को तैयार किया है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, जो किताब का ज्ञान है वो किताब का ज्ञान है, उसका बाहर से भला क्या संबंध, उसका बाहर से क्या लेना देना। आप मेरे लेक्चर में इस बात का अनुभव करेंगे। साथ ही साथ मैंने अपने लेक्चर्स में मॉडल्स बताए हैं कि अगर आपको इकोनॉमिक्स को समझना है तो उसका ये मॉडल है, और फिर जो अलग अलग टॉपिक्स है उन अलग अलग टॉपिक्स को भी मैंने व्यावहारिक जीवन से जोड़कर समझाने की कोशिश की है, फिर चाहे वो टॉपिक ज्योग्राफी का ही टॉपिक क्यों ना। मॉडल देखिए, आपको इस मॉडल में पूरे के पूरे इस टॉपिक के सारे तत्व दिखाई देंगे, और एक बार जब आप किसी विषय को इस रूप में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उस विषय पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है या उस विषय के बारे में एकदम से आपका जो ज्ञान है वो व्यावहारिक स्तर का ज्ञान हो जाता है। जैसे किसी विषय के बारे में हमारा ज्ञान व्यावहारिक स्तर का होता है, वैसे ही हम उसे अपने जीवन में अप्लाई करने लगते हैं। आपको अपने दिमाग से इस धारणा को हटाना ही होगा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो भी तैयारी होती है वह केवल किताबों से ही होती है। और मैं यह बात ये जानते हुए कह रहा हूँ कि मेरी इस बात पर यकीन करने वालों का प्रतिशत बेहद कम होगा। कोई बात नहीं, आपको यदि मेरी बातों पर यकीन आता है तो आप उसे स्वीकार कर सकते हैं, और यकीन नहीं आता है तो आप बिल्कुल, यह आपका अधिकार है, आप उसे आउटराइट रिजेक्ट कर सकते हैं। मैं आज आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ। प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने के बाद इस पर विचार कीजिएगा। यदि मैं किसी स्टूडेंट से इस प्रश्न के बारे में पूछूं, और मैंने ऐसा किया है, तो ज्यादातर स्टूडेंट ने एक शिकायत की है। शिकायत ये की है कि इसमें सर जिन जिन पेड़ों के नाम दिए हुए हैं, पता नहीं कितने पेड़ हैं, 100-200 पेड़ हैं, तो क्या हम सब पेड़ों के बारे में रटें, पढ़ें? क्योंकि उनके दिमाग में तो यही बात है ना कि जो प्रश्न आएंगे वो किताब से आएंगे। लेकिन अगर आप उसमें ऑब्जर्वेशन को शामिल कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, ये प्रश्न तो बहुत ही आसान सा है। ये प्रश्न कौन सा है? ये पिछले साल का प्रश्न है। मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, और अगर आपके पास प्री एग्जामिनेशन का सेट A होगा तो यह शुरू का ही प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। मैं इसकी बहुत बारीकी से आपके सामने समीक्षा कर रहा हूं, हालांकि हो सकता है कि मेरी समीक्षा से आपको ऊब हो, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा तरीका ही यही है। निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। नंबर वन कटहल, और ब्रैकेट में दिया हुआ है आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस। इसके बाद टू है महुआ, ब्रैकेट में दिया हुआ है मधुका इंडिका, और इसके बाद तीसरा है सागौन, ब्रैकेट में दिया हुआ है टेक्टोना ग्रैंडिस, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद है उपर्युक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। मैं दोस्तों इंग्लिश में पढ़ करके नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि बहुत ही सामान्य है। पर्णपाती शब्द से हो सकता है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं थोड़े से भ्रम में पड़े, तो वहां शब्द है डेसीडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, ये ज्योग्राफी के बहुत ही बेसिक लेसन का प्रश्न है। अगर हम फॉरेस्ट को लेकर के चले, पर्णपाती फॉरेस्ट, ये बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न टॉपिक के दृष्टि से। लेकिन चूंकि यहां अलग अलग पेड़ों के नाम दे दिए गए हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ज्योग्राफी की किताब में जब आप इसके उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो सागौन पेड़ का उल्लेख तो आपको मिल जाएगा। जब फॉरेस्ट के अलग अलग रूप बताते हैं, तो उसमें सागौन का नाम आपको मिल जाएगा, पेड़ का सागौन, शीशम, इनके नाम मिल जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको महुआ और कटहल का नाम न मिले। यदि किसी किसी किताब में महुआ का नाम मिल भी जाएगा, तो कटहल का नाम तो नहीं ही मिलेगा, क्योंकि ये इतना पॉपुलर वृक्ष नहीं है, है ना। महुआ और सागौन तो चलिए बहुत ही पॉपुलर है, इसलिए सागौन पेड़ का उल्लेख हर में मिल जाएगा। महुआ थोड़ा सा कम पॉपुलर है, हो सकता है ये भी मिल जाए। लेकिन कटहल सब्जी के रूप में तो पॉपुलर हो सकता है, पेड़ के रूप में उतना पॉपुलर नहीं। अब आप देखिए कि ब्रैकेट में बॉटनिकल नेम दिए गए हैं। आपको मालूम है कि आपके एग्जामिनेशन के माध्यम से ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो अपीयर होना चाहते हैं उनका प्री शामिल होता है, तो ये उनकी सुविधा के लिए दे दिया गया है, क्योंकि जो बॉटनी के स्टूडेंट होंगे वो इसी नाम से ज्यादा इसे पहचान पाएंगे। कोई बात नहीं, ये उनकी सुविधा के लिए दे दिया गया, कम से कम सुविधा का ध्यान तो रखा गया है, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। अब ये किस तरह का प्रश्न है? चलिए आप गांव के एक आदमी के पास चले जाइए, गांव के एक आदमी से पूछिए कि भैया ये बताओ कि ये तीन तरह के पेड़ होते हैं, इनमें से ऐसा पेड़ कौन सा है जो साल में एक बार एकदम सूखा सा हो जाता है? देखिए उससे अगर आप पूछेंगे कि पर्णपाती वृक्ष कौन सा है, डेसिडुअस ट्री कौन सा है, तो वो नहीं बता पाएगा, एकदम नहीं बता पाएगा। आपकी तरफ देखने लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, पर्णपाती ये क्या होता है पर्णपाती, उसको कुछ नहीं मालूम पर्णपाती। लेकिन यदि आप उसे इस भाषा में बात करेंगे कि भैया वो जो पेड़ है ना, साल में एक बार एकदम ऐसा लगता है जैसे तो मर गया, सूख गया, उसके पत्ते सब गिर जाते हैं, पर्णपाती, पर्ण का मतलब है पत्ता, पाती का मतलब है गिर जाना, पतित हो जाना, उसके सारे के सारे पत्ते गिर जाते हैं, यानी कि वह जो पेड़ है साल में एक बार अपने पत्ते गिरा देता है और इसके बाद फिर हरा भरा हो जाता है। जैसे ही आप उससे कहेंगे तो कहेगा कि अच्छा फिर से जरा सा नाम बताइए, कौन कौन सा पेड़ आपने बताया था, तो आप कहेंगे कटहल, तो तुरंत कह देगा कि नहीं, कटहल का पेड़ तो हमेशा हरा भरा रहता है, वो तो कभी सूखता ही नहीं है, ये नहीं होगा। फिर आप कहेंगे महुआ, बोले हाँ महुआ का पेड़ तो सूख जाता है एक बार, और इसके बाद कहेंगे सागौन, अरे बोले उसका तो पेड़ एकदम ही सूख जाता है, पत्ते एकदम नीचे गिर जाते हैं और एकदम सूखे सूखे पत्तों का ढेर लग जाता है उसके जंगल में। तो इसका मतलब है कि कटहल अपने पत्ते साल में एक बार नहीं गिराता है, लेकिन महुआ और सागौन गिरा देते हैं। अब विकल्प क्या है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं, तो विकल्प हो जाएगा केवल दो। अब मुझे नहीं मालूम कि मेरा यह उदाहरण आपको कितना अपीलिंग लग रहा है, या कितना सही या गलत लग रहा है, या हो सकता है कि आपको ये मन लुभावन सा लग रहा हो कि सर ने जबरदस्ती खींच तान करके इसकी व्याख्या कर दी है। दोस्तों यदि आपको ऐसा लग रहा हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था और आज भी लेखक के रूप में जो भी मैं लिखता हूं उसमें केवल किताबी ज्ञान नहीं होता, किताबी ज्ञान तो मुश्किल से 25% होता है, समाज जीवन और इस जगत का ज्ञान उसमें ज्यादा शामिल होता है। एक सीनियर राइटर के रूप में मैं आपसे यह बात कह सकता हूं, और यहां तक कि जब मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाता भी हूं तो उसमें भी जो 25% ज्ञान होगा अधिकतम वह किताबों का होता है, और जो 75% जो ज्ञान होता है मेरी कोशिश होती है कि वह व्यावहारिक जगत का हो। लेकिन हाँ ये बात अलग है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ या जब मेरे आप लेक्चर सुन रहे हैं, यहां तक कि जो रिकॉर्डेड ऑनलाइन लेक्चर है, तो आपको ये भ्रम हो सकता है कि मैं किताबों की बात कर रहा हूं, लेकिन यदि आपको उसमें रोचकता लग रही है, सुनने में आपको मजा आ रहा है, या यूं कह लीजिए कि आपको समझ आ रही है बातें, तो ये मान करके चलिए कि नहीं, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें व्यावहारिकता का पुट, व्यावहारिकता का अंश ज्यादा है। तो दोस्तों, मैंने ये एक प्रश्न के बारे में आपसे बातें की हैं, संभव हो सका तो मैं कुछ और प्रश्न आपके सामने आगे चल करके रखूंगा, यदि संभव हो सका तो। तो फ्रेंड्स, आज के विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से एक दोस्त है सूरज सिंह, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।